नमस्कार, आज हम उन सवालों के सागर में उतरने वाले हैं जो शायद मतलब इंसानियत जितने ही पुराने हैं। ईश्वर कौन है, अगर है तो कहाँ है, और उसका स्वभाव कैसा है।
ये ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में कभी ना कभी आते हैं।
बिल्कुल, और इन सवालों को समझने के लिए हमारे पास पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्माचार्य द्वारा रचित एक बहुत ही दिलचस्प सामग्री का पहला अध्याय है।
हाँ।
हमारा मकसद यहाँ किसी बात को मानना या मनवाना नहीं है, बल्कि इन गहरे विचारों को आज के यू नो तार्किक नजरिए से परखना है।
सही बात है, एक विचार यात्रा की तरह।
चलिए देखते हैं कि ये विचार यात्रा हमें कहाँ ले जाती है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आज के समय में बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ब्रह्मांड में जो व्यवस्था है वो तो भौतिकी के नियमों लॉज ऑफ फिजिक्स के वजह से है,
एक आम तर्क है ये।
तो इसके लिए किसी ईश्वर या निर्माता को मानने की क्या जरूरत है। पूज्य गुरुदेव का तर्क इससे आगे कैसे जाता है, वो नियम और नियामक में क्या फर्क बताते हैं।
ये एक बहुत ही सही सवाल है, और पूज्य गुरुदेव का तर्क इसी व्यवस्था की प्रकृति से शुरू होता है। वो कहते हैं कि सिर्फ नियमों का होना ही काफी नहीं है।
अच्छा।
हाँ, बल्कि नियमों का एक उद्देश्य के साथ, एक इंटेलिजेंस के साथ लगातार काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो उदाहरण देते हैं, जैसे बीज से गेहूं ही उगता है, आम नहीं। दिन के बाद रात होती है, बचपन के बाद जवानी और फिर बुढ़ापा आता है। ये कोई मतलब रैंडम प्रोसेस नहीं है, इसमें एक कंसिस्टेंसी है, एक बुद्धिमत्ता झलकती है।
मतलब ये कहना कि ये सिर्फ नियम है, ये तो ऐसा है जैसे हम कहें कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम सिर्फ कोड है, लेकिन उस कोड के पीछे।
बिल्कुल, उसके पीछे एक कोडर है, एक लॉजिक है, एक उद्देश्य होता है।
हाँ, एक उद्देश्य होता है। तो क्या यहाँ ये तर्क दिया जा रहा है कि इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के पीछे भी एक कोडर जैसी चेतना है।
हाँ, यही मूल तर्क है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे हमारे छोटे मोटे काम भी बिना व्यवस्था के नहीं चल सकते, तो इतनी बड़ी सृष्टि जिसमें अरबों आकाश गंगाएं एक सटीक नियम से चल रही हैं, वो बिना किसी संचालक के कैसे चल सकती है। अब इस संचालक शक्ति को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं।
ठीक है।
जो भौतिक विज्ञान के नजरिए से देखते हैं वे इसे प्रकृति या नेचर कह देते हैं, जो अध्यात्मवादी हैं वे इसे ईश्वर कहते हैं। मतलब नाम का मतभेद हो सकता है,
पर शक्ति एक ही है।
हाँ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सृष्टि का संचालन करने वाला एक अदृश्य चेतन तत्व मौजूद है।
ठीक है, तो अगर हम एक पल के लिए मान लें कि एक संचालक शक्ति है, तो फिर सवाल उठता है कि वो है कैसी। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव की बातें काफी गहरी और एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं जब वो सृष्टि को जड़ और चेतन में बांटते हैं। इसका क्या मतलब है?
हाँ, ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। वो कहते हैं कि सृष्टि में दो तरह की चीजें दिखती हैं, एक जड़ यानी इनर्ट मैटर जो पंचभूतों से बना है,
पृथ्वी जल वायु
अग्नि और आकाश। बिल्कुल। और दूसरी चेतन यानी कॉन्शियस बीइंग्स, जिनमें जीवन है, बढ़ने की इच्छा है और आनंद महसूस करने की क्षमता है।
अच्छा।
इसी गुण को सत चित आनंद कहा गया है। सत यानी अस्तित्व, चित यानी चेतना, और आनंद यानी ब्लिस।
मुझे ये बात हमेशा फैसिनेट करती है, क्योंकि ये आज के विज्ञान और दर्शन के सबसे बड़े सवाल से जुड़ती है, जिसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं।
हाँ, सही है।
यानी भौतिक चीजों जैसे हमारे दिमाग से व्यक्तिपरक अनुभव, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसे पैदा होता है। पूज्य गुरुदेव का ये विचार कि चेतना कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक मूलभूत शक्ति है जो जड़ पदार्थ को भी बनाती है, ये तो बहुत ही रेडिकल आइडिया है।
बिल्कुल। और वो कहते हैं कि अब विज्ञानवादी भी इस दिशा में सोचने लगे हैं कि सिर्फ मैटर ही सब कुछ नहीं है, उस जड़ जगत के पीछे एक चेतन आद्य शक्ति की धारा बह रही है, और ये शक्ति अंधी या निर्बुद्धि नहीं है
बल्कि विवेकवान है।
हाँ, विवेकवान है, तभी तो सृष्टि में इतनी व्यवस्था है। हाँ, तर्क ये है कि जो वस्तु जितनी सूक्ष्म यानी सटल होती है वो उतनी ही ज्यादा व्यापक होती है।
जैसे?
जैसे पत्थर से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म वायु है, और वायु से भी सूक्ष्म आकाश है जो हर जगह मौजूद है। ईश्वर तत्व को आकाश से भी अनंत गुना ज्यादा सूक्ष्म माना गया है।
अच्छा, इसलिए वो कण-कण में व्याप्त है।
बिल्कुल।
लेकिन यहाँ एक बड़ा बट आता है, अगर ईश्वर हर जगह एक समान रूप से मौजूद है तो फिर हमें उसकी मौजूदगी कहीं ज्यादा और कहीं कम क्यों महसूस होती है।
हम क्यों कहते हैं कि किसी तीर्थ में या किसी महात्मा के पास ईश्वरीय अनुभूति ज्यादा होती है?
ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूआंस है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ईश्वर की व्यापकता हर जगह समान रूप से प्रकट नहीं होती। जैसे बिजली पूरे तार में होती है पर रोशनी सिर्फ बल्ब में दिखती है, या जैसे चूल्हे के पास गर्मी ज्यादा महसूस होती है, दूर कम।
सही बात है।
वैसे ही जहाँ सत्य, विवेक और धर्म का आचरण होता है, वहाँ ईश्वर तत्व की अधिकता महसूस होती है, और जहाँ आलस्य, अधर्म और अज्ञान है, वहाँ उसकी मौजूदगी दबी रहती है, प्रकट नहीं होती।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अवतार कहे जाने वाले महापुरुष हैं, जैसे राम या कृष्ण, वो ईश्वर नहीं थे बल्कि ऐसे इंसान थे जिनमें वो ईश्वरीय गुण सबसे ज्यादा प्रकट हुए थे।
एकदम सही। पूज्य गुरुदेव के अनुसार वे अपने सत्य, प्रेम और परोपकार के स्वभाव के कारण उस ईश्वरीय शक्ति को अपने अंदर ज्यादा मात्रा में आकर्षित और प्रकट कर पाए, इसीलिए उन्हें ईश्वर का प्रतिनिधि या अवतार माना गया।
ये सब समझने के बाद एक स्वाभाविक सवाल मन में उठता है, आखिर इस पूरी सृष्टि का, इस खेल का उद्देश्य क्या है? ईश्वर ने ये सब क्यों रचा?
इसका जवाब शायद सबसे मुश्किल है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसका ठीक ठीक कारण जानना मानवीय बुद्धि की पहुंच से बाहर है, इसे अज्ञेय कहा गया है। अध्यात्म की भाषा में इसे ईश्वर की लीला कह देते हैं, जिसका सूत्र है एको अहमम बहु स्याम,
यानी मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं।
हाँ, जैसे किसी कलाकार की इच्छा हुई और उसने खूबसूरत पेंटिंग बना दी।
ईमानदारी से कहूँ तो ईश्वर की लीला जैसा जवाब कई लोगों को संतुष्ट नहीं करता। ये सुनने में ऐसा लगता है कि हम नहीं जानते, इसलिए इसे एक रहस्य मान लो। क्या इसका कोई और व्यावहारिक पहलू भी समझाया गया है?
हाँ बिल्कुल। लीला वाले जवाब से आगे बढ़कर पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सृष्टि के विकास की प्रक्रिया को देखकर एक उद्देश्य साफ समझ आता है।
वो क्या है?
वो उद्देश्य है हर जीव का विकास हो, हर आत्मा लघुता से महानता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े और अपनी पूरी क्षमता को हासिल करे, यानी पूर्णता प्राप्त करे। यही ईश्वरीय विधान या आदेश प्रतीत होता है।
तो ये एक तरह का कॉस्मिक एवोल्यूशन का स्पिरिचुअल मॉडल हुआ। और इस प्रक्रिया में ईश्वर का रोल क्या है? क्या वो हर किसी के कर्मों का हिसाब किताब रखता है, जैसे कोई जांचे, कोई इन्विजिलेटर हो?
यहाँ पर एक बहुत ही दमदार एनालॉजी दी गई है जो ईश्वर के रोल को साफ करती है या कर्म के सिद्धांत को समझाती है।
अच्छा,
इसे ऐसे समझें कि ईश्वर ने एक गेम बनाया है और उसके नियम तय कर दिए हैं। आप खेलने के लिए पूरी तरह आजाद हैं, लेकिन गेम की फिजिक्स या कोडिंग पहले से तय है।
मतलब आप आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे, ये सिस्टम का नियम है।
बिल्कुल, इसमें गेम बनाने वाले का आपके प्रति कोई पक्षपात नहीं है।
तो वो ग्वाले वाला उदाहरण इसी बात को समझाता है।
हाँ, एक ग्वाला अपनी गाय को भटकने से रोकने के लिए उसके गले में एक मोटी लकड़ी बांध देता है। जब तक गाय सीधे रास्ते पर चलती है कोई दिक्कत नहीं होती, पर जैसे ही वो भाग दौड़ या उछल कूद करती है, वही लकड़ी उसके घुटनों में लगती है और उसे दर्द होता है। ग्वाला दूर पेड़ के नीचे बैठा बस देखता रहता है, वो न लकड़ी मारता है न गाय को रोकता है।
गाय अपने कर्मों का फल तुरंत खुद ही पा लेती है।
बस, ईश्वर भी बस एक समदर्शी, निष्पक्ष साक्षी है। उसने कर्म फल का विधान बना दिया है और हर जीव को एक अंतरात्मा की आवाज दी है जो सही और गलत बताती है। बाकी सब हमारे हाथ में है।
ये सब सुनने के बाद भी मेरे मन में एक व्यावहारिक सवाल आता है, और शायद बहुत से श्रोताओं के मन में भी होगा। अगर ईश्वर निराकार है, फॉर्मलेस है, कण कण में है, तो फिर हम इंसानों ने उसके इतने सारे रूप क्यों बनाए? ये मंदिर, मूर्तियां, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा की तस्वीरें, ये सब उस निराकार विचार से कैसे जुड़ा?
ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। पूज्य गुरुदेव इसे बहुत साफ तौर पर समझाते हैं। उनका कहना है कि मन को किसी निराकार, सर्वव्यापी चीज पर टिकाना बहुत मुश्किल होता है।
हाँ, मन तो चंचल है।
बिल्कुल, उसे ध्यान के लिए एक आलंबन, एक एंकर चाहिए। चूंकि मनुष्य ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ कृति है, इसलिए ईश्वर की कल्पना भी मनुष्य रूप में की गई, जिसमें दैवीय गुणों का समावेश हो।
अच्छा, जैसे राम मर्यादा के प्रतीक,
कृष्ण प्रेम के, शिव वैराग्य के प्रतीक बने।
तो ये मूर्तियां या तस्वीरें सिर्फ मेडिटेशन के लिए एक टूल है, एक मानसिक प्रतीक।
बिल्कुल, वे स्वयं ईश्वर नहीं है बल्कि ईश्वर के किसी गुण या आदर्श की कल्पना प्रतिमाएं हैं। जैसे एक बच्चा अल्फाबेट सीखने के लिए ए फॉर एप्पल की तस्वीर का सहारा लेता है,
सही।
वैसे ही एक साधक ईश्वर के गुणों पर ध्यान लगाने के लिए इन रूपों का सहारा लेता है। ईश्वर तत्व तो बिजली की तरह निराकार है, बल्ब सिर्फ उसे प्रकट करने का एक माध्यम है।
लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा जैसी रस्मों का क्या महत्व है? या ये विश्वास क्यों है कि किसी खास मंदिर की मूर्ति में ज्यादा शक्ति है? ये विचार तो सर्वव्यापी ईश्वर के सिद्धांत से मेल नहीं खाता।
ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू है। देखिए, मूर्ति पत्थर की ही है, लेकिन जब हजारों लाखों लोग एक ही स्थान पर एक ही प्रतीक के सामने अपनी पूरी श्रद्धा, अपनी प्रार्थना, अपनी ऊर्जा केंद्रित करते हैं, तो उस स्थान और उस प्रतीक में एक खास तरह का ऊर्जा क्षेत्र, एक साइकिक फील्ड बन जाता है। प्राण प्रतिष्ठा एक तरह से उस प्रतीक को सामूहिक चेतना से जोड़ने का एक संकल्प है।
तो शक्ति पत्थर में नहीं है?
नहीं, शक्ति उससे जुड़ी हुई सामूहिक आस्था और ऊर्जा में होती है। ये मनुष्य के मन को एकाग्र करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, पर ये ईश्वर को उस मूर्ति में बांधना नहीं है।
ये एक बहुत ही दिलचस्प व्याख्या है। अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा।
अच्छा,
पूज्य गुरुदेव ईश्वरवाद यानी ईश्वर में विश्वास की एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जरूरत भी बताते हैं। ये लगभग ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हों कि ईश्वर का विचार एक तरह का सोशल इंजीनियरिंग टूल था।
आप इसे इस तरह से देख सकते हैं, ये एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस समय को सोचिए जब कोई मजबूत शासन तंत्र, कोई पुलिस या अदालत नहीं थी।
अराजकता का माहौल।
हाँ, तब मनुष्य को उसकी पाश्विक वृत्तियों, स्वार्थ, लालच, हिंसा से ऊपर उठाने के लिए एक अदृश्य शासन की स्थापना की गई, और वही था ईश्वरवाद।
एक अदृश्य पुलिस जो हमेशा आपको देख रही है।
हाँ, ये विश्वास कि कोई सर्वशक्तिमान हमें हर पल देख रहा है, हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रख रहा है, ये विश्वास मनुष्य को अकेले में भी पाप करने से रोकता था।
सही बात है।
धर्मशास्त्रों ने इसी आधार पर नियम बनाए। उन्होंने चोरी, झूठ, हिंसा को पाप घोषित किया और दया, सेवा, सत्य को पुण्य कहा, जिसके लिए स्वर्ग का पुरस्कार और पाप के लिए नरक का दंड तय किया।
इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य की स्वार्थी इच्छाओं पर लगाम लगाना था।
बिल्कुल, ताकि समाज में सुख शांति बनी रहे।
तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक नियंत्रण था, ताकि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान ना करें।
हाँ बिल्कुल, प्राचीन व्यवस्थाकार जानते थे कि सिर्फ कानून की पुस्तकें काफी नहीं हैं। जब इंसान की इच्छाएं और वासनाएं हावी होती हैं, तो सारे नियम कानून धरे के धरे रह जाते हैं।
सही।
इन प्रबल इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए एक गहरी आंतरिक मान्यता की जरूरत थी। ईश्वर में विश्वास और कर्मफल का सिद्धांत वही मान्यता थी जिसने हजारों सालों तक समाज को एक नैतिक डोर में बांधे रखा।
तो आज की हमारी इस चर्चा में हमने पूज्य गुरुदेव के विचारों के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व के पीछे के तार्किक आधार को समझा, उसके सर्वव्यापी और निराकार स्वरूप को जाना, कर्म के निष्पक्ष सिद्धांत को एक गेम के नियम की तरह देखा, और आखिर में ईश्वरवाद की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जरूरत को भी परखा।
हाँ, ये पूरी चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न हमारे सामने छोड़ जाती है। यदि ईश्वर में विश्वास की एक मूल वजह मनुष्य को उसके पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊपर उठाकर एक बेहतर समाज बनाना था, तो आज के आधुनिक समय में जहां हमारे पास कानून है, विज्ञान है, शिक्षा है, हम उन नैतिक गुणों को अपने भीतर कैसे विकसित कर सकते हैं?
बहुत गहरा सवाल है।
चाहे किसी का विश्वास किसी भी रूप में हो या ना हो, वो अपने अंदर करुणा, सत्य निष्ठा और निस्वार्थ भाव कैसे जगाए, जो अंततः एक बेहतर और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए जरूरी है।